33 نمبر کے رجسٹر میں 44 پیج پر 23/11/91 کا پہلا کلاس. باپ کو سبھی روحانی بچوں کو ساتھ ساتھ جو بھی شکتی بھر میں جیواتمائیں ہیں ان سب جیواتماؤں کو واپس لے جانا ہے, کیونکہ اب اندھیاری رات پوری ہوتی ہے, پرانی دنیا پوری ہو, نئی دنیا کی استھاپنا ہو رہی ہے. دنیا تو ہے پرنتو اس میں رہنے والوں کی استھاپنا کرتے ہیں. ستو آج میں برابر آج سناتن دیوی دیوتا دھرم ہی تھا, اب وہ سوریہ ونشی چندر ونشی نہیں ہے. باپ سمجھاتے ہیں انہوں نے پنرجنم لیتے لیتے اب 84 جنم پورے کیے. اس سمے سب پارٹ دھاری تمو پردھان ہو گئے, چاہتے بھی ہیں رام راجی, نئی دنیا نئی دہلی چاہیے. جیسے بچے کہتے ہیں نا ہم کو فلانی نئی چیز چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں بابا نئی دنیا کے لیے ہم کو نئے وسط چاہیے. دیپ مالا پر منشیہ نئے وسط پہنتے ہیں, تو نئی دنیا سے دیپ مالا کا کیا کنیکشن؟ دیپک مانا چیتنیہ دیپک, آتما روپی, آتما روپی دیپک جب جگتے ہیں کہتے ہیں دیپاولی, دیپوں کی اولی, اولی مانے قطار لائن, مانے جگتے ہوئے چیتنیہ آتماؤں کے دیپکوں کی لائن, مانا مالا دیپ مالا. تو جاگتی جوتی کی جب مالا تیار ہوتی ہے, مانا نیا سنگٹھن تیار ہوتا ہے, تو نئے وستر پہنتے. پہلی شرط نئے دیپکوں کا سنگٹھن بنے, اور جب دیپکوں کا سنگٹھن بنے تو پرانی دنیا وناش ہو اور نئے وستر پہنے. وستر مانا نئے, وستر مانا شریر روپی وستر. کرشن جینتی پر نئے وستر پہننے کی بات نہیں رہتی ہے, کیوں؟ دیپ مالا پر نئے وستر پہنتے ہیں. ہاں خریداری آدھے بہت کرتے ہیں, کون سے کرشن جینتی کی بات ہے؟ ستیگ میں کرشن ہونے والے جنم لینے والی کرشن کی بات ہے یا سنگم یوگ میں کرشن کی بات ہے؟ کیوں ستی جی کرشن کی بات کیوں نہیں؟ ستی جی کرشن کا کوئی گائن نہیں ہے جنم کا, جو سنگم یوگ میں کرشن کی سول, رادھا کی سول کوئی براہمن بچے میں پرویش کر کے پرتیکش ہوتی ہے, تو پرتیکشتا روپی جنم کی بات ہے. تو اس سمے تو آتمائیں آتمک اسٹیج میں ٹکنے کا پرسارتھ کرتی ہے. آتما بھرپور ہوتی ہے, دیپک جگے ہوئے نہیں ہیں, جاگنے کا پرسارتھ کرتے ہیں. اور دیپ ماپا مالا پر جوتی جگ جاتی ہے. تمہاری اب جوتی جگ رہی ہے, انہوں کی ہے بھکتی مارگ کی دیپ مالا, उनों की मन भक्ति मार्ग वालों की जो स्थूल ज्योति जगाते हैं वो भक्ति मार्ग की दीपमाला है और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुम ज्ञान की ज्योति जगाते हो और वो स्थूल ज्योति जगाते हैं। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने, तुम्हारी जब पूरी ज्योति जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र स्वतः ही मिल जाएंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे बुलाते भी हैं, हे पति के पावन आओ, वो फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। भारतवासी क्या कहते हैं, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। माना भारतवासी पतित पावन बाप के रूप में पहचानते हैं और वो सिर्फ दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे देश के लोग पतित पावन के रूप में नहीं पहचानते, वो लिबरेटर के रूप में पहचानते हैं, मुक्तिदाता, मुक्ति आकर के दो। वो मुक्ति मांगते हैं और तुम बुलाते हो पतित पावन आओ, वो पतित पावन आओ कह करके बुलाते भी नहीं है तो पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं है। तुम पूरे पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन बाप को बुलाते भी हो। कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, कल्प कल्प आकर के सबको ले जाता हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठदारी। ये है जीवात्मा, शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूं, नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं, ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वो जरूर जाति जन्म लेंगे, पहले पहले माना सत्यु की आदि से ही। जाति से जाति 84 जन्म है, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये पाठ बैठ सबको समझाते हैं, बाप सबको समझाते हैं। अब सबको तो नहीं पढ़ाएंगे परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, बाप आकर के जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे। जरूर क्यों लगाया, कोई कोई को संशय हो जाता है कि बाप पढ़ाई पढ़ा के चले जाएंगे फिर हम नई दुनिया स्थापन करते रहेंगे, इसलिए जरूर शब्द लगाया कि बाप ही आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आकर के नई दुनिया नहीं बनाते, फिर पुराने मकान की मरम्मत करते रहते हैं, मकान फिर पुराना होता जाता है, नया मकान तो कोई नहीं बनाते, बाप ही बनावेंगे। मनुष्य को रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। इस सृष्टि का रचयिता कौन है और रचना कौन है? हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। क्या अंतर है? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज में श्रद्धा विश्वास तो है लेकिन अंध शब्द नहीं है, समझ पूर्वक हर काम करना है। ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही भक्ति हो, गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अंधेरी रात में मनुष्य धक्के खाते होते, बाप कहते हैं ठिककर भीतर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं, हैं? बात कहाँ की है? कौन सी अंधेरी रात में ठिककर भीतर में जाकर ढूंढते हैं? जो भक्ति में डूबे होते हैं 63 जन्म, लेकिन शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में जो ठिककर बुद्धि है, ऐसी बुद्धि कि ठोकर थोड़ी सी माया की लगे और ज्ञान मार्ग में से टूट जाए, ऐसे ठिककर बुद्धियों को भी भगवान का रूप मान लेते हैं, उनमें भी समझते हैं भगवान इनमें भी प्रवेश करता है, इनमें भी परमात्मा आता है हमको डायरेक्शन देता है। भीतर बुद्धियों को भी भगवान समझ बैठते हैं, जो ज्ञान मार्ग में भीत बनकर दीवाल बनकर रोड़े बनकर के अटक जाते हैं, न खुद ज्ञान में आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धियों को भी भगवान का रूप समझ लेते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते, अब वो सब भगवान तो नहीं हो सकते। तो मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं, माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है, भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम कोई रघुपति वाला नहीं, उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी, मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्माएं जाएंगी, ये तो पुराना चीची शरीर है, बम्बोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बनाए रहे। अब वो कहते हैं बाम से न बनाए, अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बाम होंगे वो जरूर शक्तिशाली होंगे, फिर दूसरे अपने को बचाए कैसे सकेंगे? दूसरे अगर बाम से न बनाए तो काम न चले। अब वो जब समुद्र में डालें तब वह भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी, इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बांस नहीं थे, अभी निकले हैं, इसलिए सारी धमाधम मच रही है। अब ये तुम जानते हो ये सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है, अगर निश्चय होता तो योग में बहुत अच्छी रिक्त रहते। यूं बोलते विश्व की बात साई लेनी है, तुम बाप की श्रीमत से याद के बल से विश्व के मालिक बनते हो, कोई हथियारों की बात नहीं है। तुम्हारी सब बातें गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, جو سکھلانے والا ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتا ہے. کون ہے؟ سپریم سول. اب تم نے آتما کو ریئلائز کیا ہے کہ مجھے آتما میں 84 جنموں کا پارٹ بھرا ہوا ہے. ہم آتما اوناشی ہے. کون سی آتما اوناشی ہے؟ اوناشی پارٹ دھاری کون ہوئے جن کے پورے 84 جنم ہیں؟ آل راؤنڈ پارٹ بجانے والی ہیں. یہ ہم کو ریئلائزیشن ہوا ہے. اوروں کو اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہوا. یہ اتی گوہی بات ہے. اخبار میں بھی لکھا ہے کہ آتما کیا ہے جو شریر میں رہتی ہے. یہ کوئی بتا دے تو ان کو لاکھوں روپیہ مل سکتا ہے. آتما کیا ہے, کہاں سے آتی ہے, کیسے پارٹ بجاتی ہے, یہ کوئی بھی نہیں جانتے. کوئی کہتے گدگدا ہے. کوئی مانا کون سنیاسی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ساگر میں سے جیسے گدگدے نکلتے ہیں اور ساگر میں سما جاتے ہیں, لین ہو جاتے ہیں, ایسے آتما بھی پرماتما سے نکلتی ہے گدگدے کے موافق اور پرماتما میں لین ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو گائن کرتے ہیں کہ آتما گدگدے مثل ہے, وہ بات کہاں کی ہے؟ وہ بھی سنگم یوگ میں اپنی انبھوتی کی بات بتاتے ہیں. کیسے؟ ہاں, سادھو سنیاسی جو ہیں وہ پرماتما باپ جب آتے ہیں, پرماتما پارٹ بجاتے ہیں تو ڈائریکٹ آ کے ان کا مقابلہ تو کرتے نہیں, اندر ہی اندر گدگداتے رہتے ہیں, اپنے بھانتی بھانتی کے سنکلپ چلائیں گے. اندر سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹے, پھر بھی گدگداہٹ سے بات نہیں آتے, سنکلپ وپریت ضرور چلائیں گے. انت میں کیا ہوتا ہے رزلٹ؟ ان کے سارے گدگدا روپی دشٹ سنکلپ سب پرماتما کے سنکلپوں میں لین ہو جاتے ہیں, سما جاتے ہیں. تو وہ اپنی انبھوتی بتاتے ہیں کہ آتما بدبودا ہے, ساگر میں لین ہو جاوے گی. کوئی کہتے ہیں برہم تتو بڑی جیوتی ہے, برہم ہی بھگوان ہے. اس کی شوٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ برہم مانا برہم, سپریم سول کے رہنے کا استھان. رہنے کا گھر, گھر مانا شریر. تو برہما کا شریر بھی کس کا گھر ہوا؟ پرماتما باپ کا بھی گھر ہے. تو ہم آتمائیں بھی کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ ہم آتماؤں کو اپنے سوروپ کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ برہما, برہما کے بدھ روپی پیٹ سے ہی سنکلپ رچے گئے, برہما کے سنکلپوں سے ہی سشتی رچی جاتی ہے. تو پہلے پہلے کیا ہوتا ہے؟ برہما کی بدھی میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ آتما بندو ہے, اور یہ گیان ان کے مکھ سے نکلتا ہے. تو برہما کے بدھ روپی پیٹ سے ہی جیسے سب آتماؤں کا جنم ہوا, تو آتماؤں کے رہنے کا بھی استھان وہی برہما کا بدھ روپی پیٹ, اور پرماتما کا بھی رہنے کا استھان برہما کا بدھ روپی پیٹ. تو وہ جیسے برہما ہوا, اب اس برہما کی گود میں جو پلے ہیں پریکٹیکل جیون میں, پرنتو شیو جیوتی کو نہیں پہچانا جنہوں نے, وہ برہما کو ہی بھگوان سمجھ لیتے کہ برہما ہی بھگوان ہے. اب برہما تو برہما, یا برہما تو بھگوان کے رہنے کا استھان ہے, نہ کہ بھگوان ہے. استھان میں جڑت ہوتا ہے اور رہنے والے میں جڑت نہیں ہوتا ہے. تو کوئی کہتے ہیں برہما, یا برہما ہی بھگوان ہے, اس سے بڑی جیوتی کوئی ہوتی نہیں. اب جیوتی مانا کیا؟ جیوتی مانا جان. وہ سمجھتے ہیں کہ برہما سے جاتی جان اس منشیہ شکتی پر ساکار میں کسی میں ہو نہیں سکتا. اب جیوتی کا پنج تو پرماتما ہی ہے, وہ جان کا ساگر کہا جاتا ہے. تو جو ساگر ہے وہ سوئم اس شکتی پر پرتکش ہوتا ہے جان ساگر کے روپ میں. اس ساگر میں تو سب کچھ سما جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں برہم تتو میں آتما لین ہو جائیں گی. پرنتو برہم تتو میں آتما لین نہیں ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے. انیک پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تم جانتے ہو آتما بندی سمان ہے, اس میں پارٹ بجانے کی نیند ہے. یہ ڈرامہ اناج بنایا ہوا ہے, بنا ہوا ہے. کہیں گے بنا بنایا, ان کا کوئی وناش نہیں ہوتا ہے. آتما بھی اوناشی ہے, ان کو وہی پارٹ بجانا ہے. فرق نہیں پڑ سکتا. یہ سب باتیں ان کی بدھی میں بیٹھیں گی جن کی بدھی میں کل پہلے بیٹھی ہوں. بابا کہتے ہیں اتنے ڈھیر منشیوں کو میں کیسے پڑھوں گا, اتنے بچے سمجھیں گے کہ باپ کہتے ہیں مامے کم یاد کرو تو تمہارے وکر بنا سوں گے, پھر سب کو پیغام ملے گا. باپ یہ منتر دیتے ہیں سب کے لیے. بابا سمجھاتے ہیں تم بچوں کو دیہ گن دھارن کرنے ہیں, اب گنوں کو چھوڑنا ہے. دیہ ابھیمانوں کو چھوڑو, پھر بھی چھوڑتے نہیں, ان بیچاروں کو کیا ملے گا. ایک دو سے پیار سے چلتی نہیں. تم کو تو بہت میٹھا بننا ہے. پیار کا ساگر ہے, تم بھی ان کے بچے ہو تو تم کو بہت پیارا بننا ہے. کب کوئی کتنا بھی غصہ کرے, ان کا غصہ ان کی نندا آدی سب کچھ سہن کرنا ہے. کچھ دیوالا مارتے ہیں تو سمجھتے ہیں بابا اب سہایتا کریں. ارے بابا کیا سہایتا کریں گے, یہ تو تمہارا کرم بھوگ ہے, تو تم کو سہن کرنا ہے. باپ اس میں کیا کریں گے. باپ آیا ہوا ہے سب آتماؤں کو لے جانے کے لیے, یہ بھی تم بچے ہی جانتے ہو. دنیا میں تو سب گھور اندھیارے ہیں, بھکتی مارگ میں ضرور بھکتوں کا مان ہونا چاہیے. شنکراچاریہ آج یہ سب بھگت ہیں, انہوں کو کہیں گے پوتر بھگت. بھکتی کنٹ تو ہے نا, جو پوتر رہتے ہیں انہوں کے بڑے بڑے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں. ان کا مان دیکھو کتنا ہے. شری شری 108 جگت گرو شنکراچاریہ ہی ڈولی میں. اب واسطو میں ہز ہولی نیس تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. سب کا جنم وکار سے ہوتا ہے. اپنے کو پتی تو بھرشٹاچاری کے سمجھتے نہیں ہیں. آپ تو بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں جو پاپ کرتے ہیں وہ پتت ہیں. ارے کام کٹاری چلانا تو مہا پاپ ہے. تو منشیوں کو آج مت تو وہی دکھ دیتے ہیں. کام مہا شترو. گیتا کتنے منشی پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کوئی بھی کچھ نہیں. یہ دادا بھی گیتا کا نئے نہیں تھا. اب سمجھتے ہیں یہ شاستر ہے ریلیجیس کہانیوں کے. ان ریلیجیس کتابوں کا مان بہت ہے. ان کو گھڑی گھڑی پریکرما دلاتے ہیں. بھکتی کا مان دیکھو کتنا ہے. اور گیان کا کسی کو پتا نہیں. तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। ये भगवान कहना है, ये भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, ये बाप ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। इसलिए बाप और दादा की समझानी कौन सी चित्र पर अच्छी समझाई जा सकती है? कैसे, कौन सा बाप हुआ और कौन सा दादा हुआ, और बाप कौन हुआ? एक मूर्ति की तरफ इशारा किया ये बाप, जो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराता है, और एक मूर्ति की तरफ इशारा दादा। बल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, तो कहो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। यहाँ मन साकार शक्ति पर जरूर चाहिए, इसलिए जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता भी होगा। ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। ये जो मुख्य है वो सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी राहल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है, और जास्ती टिक टिक करना फालतू। बहुत थोड़ा बोलो, तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अभी तुमसे बिल्कुल सिंपल बात समझाते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तो योग वंश विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या क्या बनते हैं। प्रजा का बैठ हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, वो तो लाखों की तादाद में बनेगी, करोड़ों हो जाएंगे। कितने करोड़ प्रजा हो जाएगी? सतयुग त्रेता की प्रजा कितनी हो जाएगी? सतयुग में 2 करोड़ अंत में और त्रेता में 5-10 करोड़ तक हो जाएगी। जो ब्राह्मण बनेंगे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आ देगा तो सबको वैराग्य आ देगा। ये वही महावारी महाभारत लड़ाई है, सभी आत्मा हिसाब किताब चुप चुप करके जाएंगी। उसको कयामत का समय कहा जाता है। 550 करोड़ शरीर खत्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलमिटीज होनी है, ये भी ड्रामा विनोद है, नई बात नहीं है। सहमन के कारण मनुष्य भूख मरते हैं। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार कराते थे, वास्तव में मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है। सच बन जाते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में, मुख में भी और मुट्ठी में भी दिखाते हैं। मुट्ठी में क्या, सृष्टि का गोला, और मुख में चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा का क्या अर्थ हुआ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो नई सृष्टि का रचयिता है। माना दादा लेखराज के रूप में नहीं, हाँ संपूर्ण ब्रह्मा जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, उन ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही नई सृष्टि की रचना होती है जिनको जगत पिता जगदम्बा कहा जाता है। तो अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है, तुम जानते हो योग बल से उन देशों के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का, भले बदली हो जाता है परंतु बाप कहते हैं कहां भी रहो परंतु पढ़ो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ निभानी मन। किसी के साथ तोड़ के नहीं रखनी है, तोड़ना मन अलग हो जाना, बात ही नहीं करना। ये दुनिया दुख देने वाली है जानते हैं, मुख्य है काम कटारी चलाना, वो भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। ये आज समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को ये मानने वाले तो देवताओं को मानने वाले नहीं है, और दूसरे धर्म वाले क्या देवताओं को मानते हैं सब? आर्य समाजी देवताएं नहीं बनते हैं, दूसरे धर्म वाले क्या देवताएं बनते हैं? दूसरे धर्म की आत्माएं भी पक्के देवता थोड़े बनते हैं। 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है, 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है। देवता उनको कहा जाता है जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं, बाकी तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। खास आर्य समाजियों के लिए क्यों कहा कि देवताओं को मानने वाले नहीं है? देवताओं को तो दूसरे धर्म वाले भी नहीं मानते, दूसरे देश वाले भी नहीं मानते। दूसरे धर्मों में जो भी कन्वर्ट होंगे वो कोई भी देवताओं को नहीं मानते। खास आर्य समाजियों के लिए इसलिए कहा है कि उनकी टेंडेंसी है जहाँ देखी तबा बरात उन्होंने बताई बिताई सारी रात। ये अवसरवादी है। द्वापर युग जब शुरू हुआ तो इब्राहिम की सोल ने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की। नई आत्मा आती है, सात्विक धर्म स्थापन करती है। देवी देवता धर्म तो पुराना हो जाता है, तो जो नई आत्माएं उतरती है ऊपर से उनको जरूर सुख मिलेगा। तो उस सुखी हुजूम में वो आर्य समाजी हैं, वो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो उन्हीं का सहयोग देते हैं। रावण जब से भारत में आए हैं तो भारत में से लड़ाई शुरू हुई बना। इस्लाम धर्म की जो व्यभिचारी आत्माएं उतरती है जिनमें प्रवेश करती है उनकी, उस करप्शन में कुछ सहयोगी बनते हैं और कोई विरोधी बन जाते हैं। जो ठेठ भारतवासी हैं वो विरोधी बन जाते हैं, खदेड़ करके उनको बाहर कर दिया जाता है, अरब देशों में चले जाते। तो आर्य समाजी भी उधर ही चले जाते। फिर क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती हैं तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते। मुस्लिम धर्म की आत्माएं आती हैं तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। माने उनका अपना कोई ईमान नहीं है, अपना कोई धर्म की दृढ़ता नहीं है, जिधर देखते हैं उधर ही कन्वर्ट होते रहते। ऐसे कन्वर्ट होते होते अंत में जाकर के फिर भारत में जब भगवान को आना होता है तब इनका कन्वर्शन होता है भारतीय धर्म, जिसे कहा जाता है आर्य समाज। वो अपने को समझते हैं कि हम आर्य हैं,
सारी माना श्रेष्ठ, माना हम जिस धर्म में जाते हैं वो धर्म श्रेष्ठ होता है, हम सदा श्रेष्ठ रहे हैं और बाकी सब मृत अनादि रहे, लेकिन ये नहीं जानते कि हम अधीन बनकर के रहते हैं। उनको स्वाधीनता का पता ही नहीं है। स्वधर्म निधनम से या पर धर्म हो भयावह, बाबा ने भी बोला है अपने धर्म में मर जाना ठीक है लेकिन दूसरे के धर्म में जाना अच्छा नहीं है, दुखदायी होता है। तो वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, लास्ट में उनको मौका मिलता है भारत में आने का, जबकि इनका हेड महर्षि दयानंद भारत में जन्म लेते हैं और वो सब धर्म वालों को खुला रास्ता छोड़ देते हैं, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। तो वो कन्वर्ट होकर के फिर आर्य समाजी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, हिंदू का लकब ले लेते हैं। लेकिन लकब लेने के बावजूद भी उनमें धर्म के प्रति आस्था नहीं होती, इसलिए आर्य समाजियों के द्वारा जो धर्म चलाया जाता है उसका जो राज्य चलता है उस राज्य को भी कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। हमको किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तुम किसी धर्म को अपनाओ, माना भारतवासी किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। बाबा कहते हैं धर्म में शक्ति होती है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है, वो धर्म की शक्ति को मानते ही नहीं। तो ऐसा राज्य जो चलता है आर्य समाजियों के द्वारा वो शक्तिशाली होगा या शक्तिहीन होगा? जरूर शक्तिहीन होगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, किसी के पाप का कोई एक्शन लेने वाला नहीं, तो अराजकता का राज्य हो जाता है। आर्य समाजियों के समय से ही खास प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है। बाबा कहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, क्योंकि प्रजा परस्त परमात्मा आकर के नहीं बनाता। आर्य समाधि है प्रजा परस्त, प्रजा से ही उनको वोट लेने हैं और राजाई करनी है। भगवान आकर के राजाई स्थापन करता है, राजाएं बनाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा प्रजा योग आकर के नहीं सिखाता, क्या सिखाता है? राजयोग सिखा करके राजा बनाता है। जो राजाएं जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त करते हैं, कंट्रोलिंग पावर उनमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो परमात्मा बाप ने आकर के बताया कि ये आर्य समाजी देवताओं को मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताएं हैं परमात्मा बाप की डायरेक्ट रचना और ये होते हैं लास्ट में जाकर के इनको मानी मोचरा थोड़ा सा मिल जाएगा सतीगुरु। ये देवताओं को मान नहीं सकते, ब्राह्मणों की दुनिया में यही शूटिंग करते हैं देवताओं को न मानने की, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया के डायरेक्ट देवताएं कौन है? ब्रह्मा सरस्वती या शंकर पार्वती है? ब्रह्मा सरस्वती को तो देवता नहीं कहेंगे, वो तो फिर भी मनुष्य हैं। जो शंकर पार्वती हैं वही वास्तव में नई दुनिया के देवता हैं। शंकर पार्वती कहो अथवा उनको लक्ष्मी नारायण कहो, उन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को, उन शंकर पार्वती के स्वरूप को ये आर्य समाधि नहीं मानेंगे। तो भक्ति मार्ग में जब शूटिंग होती है, महर्षि दयानंद की सोल आती है, तो इन्हीं आर्य समाजियों का आधार लेती है। वो आर्य समाजी भी देवताओं को नहीं मानते, वो सिर्फ निराकार को ही भगवान समझते हैं। अब निराकार भगवान कैसे नई दुनिया की स्थापना करेगा? महावीर हनुमान का नाम है, जरूर वीरता दिखाइए, नाम ही है महावीर। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी आज तो तुम समझते हो जैनियों का क्या कनेक्शन? जित शब्द से बना है जिन, जित माना जीतना, जित माना जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को जैनियों ने जीता या देवताओं ने जीता? तो देवताओं ने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया, पूरा ही इंद्रियों को जीत लिया तो जगत जीत बन गए। इसलिए कहा जाता है जितना जितना इंद्रिय जीत उतना उतना जगत जीत। इंद्रियों को नहीं जीता तो जगत जीत भी नहीं बन सकते। अपने ऊपर कंट्रोलिंग करनी है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोलिंग करनी है। इंद्रियां ही हमारी प्रजा है आत्मा की, आत्मा जैसे राजा है। तो इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने कंट्रोल किया पूरा, वो महावीर कहा गया। इंद्रियों में भी कौन सी मुख्य इंद्री है? आंख। आंख के द्वारा ही शुरुआत होती है। कामेंद्री प्रबल जरूर है, काम विकार भी प्रबल जरूर है, लेकिन उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? आंख से शुरू होती है। तो दृष्टि, और दृष्टि जब पतित बनती है तो वृत्ति भी पतित बनती है। दृष्टि और वृत्ति जब दोनों पतित बनती है, दृष्ट बनती है तो कर्मेंद्रियां भी पतित बनती है। और देवताओं की दृष्टि वृत्ति और कृति पवित्र बनती है। परमात्मा बाप ही दृष्टि से सृष्टि को पलटते, बाप आकर दृष्टि से सृष्टि को पलट देते हैं। कैसे? क्या 500 करोड़ की दृष्टि पतित से पावन बन जाती है? बनती तो है, लेकिन कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं, देव आत्माएं, जो पहले पावन बनती है, उनकी दृष्टि पहले सुधरती है। और देवात्माओं में भी कोई बीज है, देवताओं का भी बीज है और वो असुरों का भी बीज है। तो सारी सृष्टि का जो बीज है वो बीज रूप आत्माएं हैं, जगत पिता और जगदम्बा। उनका परिवर्तन, उनकी दृष्टि का परिवर्तन, उनकी वृत्ति का परिवर्तन परमात्मा स्वयं उनमें प्रवेश करके करता है। तो ऐसे देवताओं को ये राज समाधि तो नहीं मानते, लेकिन महावीरता का जो गायन है जैनियों में, हिंदुओं में उसको महावीर हनुमान कहते हैं और जैनियों में महावीर तीर्थंकर कहते हैं। वास्तव में वो तीर्थंकर कोई आज से 2500 वर्ष पहले कोई महावीर नाम का तीर्थंकर नहीं हुआ। ये तो इसी समय संगम युग की बात है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई, दृष्टि से सृष्टि को सुधारा, जिसके तीसरे नेत्र का गायन है, जिसने काम विकार को भस्म किया, माना काम देवता को भस्म किया, प्रैक्टिकल में भी कर्मेंद्रियों पर विजय पाई। तो जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। वास्तव में जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई उनके फॉलोअर्स का नाम जैन कहा गया, जिनकी औलाद जैन। तो वास्तव में हम सब महावीर की ही औलाद हैं। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। ये है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म भी नाश होंगे, फिर शांत सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई जानता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रह करके निंदा कराई तो ठहर नहीं पाए सकेंगे।
कौन सा ठग? हाँ, संगम युग में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्ग स्थापन होता है, जिसका शास्त्रों में गायन है वैकुंठ के रूप में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में गायन है हेवन के रूप में, और मुसलमानों में गायन है जन्नत के रूप में, उसमें स्थान नहीं मिल सकेगा। तो कोई भी पाप नहीं करना, कोई पाप किया ये भी निंदा हुई, क्योंकि बाप का नाम बाला नहीं किया, नाम बदनाम किया। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो भी ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विदान होंगे। वो तो है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। भगवान कौन है ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। मनुष्य होते भी बाप को न जाने तो जानवर ठहरे। माया भी सत्व रजो तमो होती है क्या है? जैसे ज्ञान भी सत्व रजो तमो होता है, दुनिया भी सत्व रजो तमो होती है, मनुष्य भी सत्व रजो तमो होते हैं, वैसे माया भी सत्व प्रधान सत्व सामान्य रजो और तमो होती है। अभी माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हमको, हम किसको आग लगाते हैं? ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान, पांडवों का प्लान, क्या क्या करते भाई। पांडवों को ऊंचे से ऊंचे प्लान बताने वाला बाप है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो मोस्ट बिलीवेड बाप से मोस्ट बिलीवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बगैर कोई कह नहीं सकता कि हम तुमको साथ ले जाऊंगा। वो तो कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा के रूप है। फिर उनको ये आएगा कहना कैसे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो, और तो कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिली बच्चों प्रति मात के साथ बात चला जाए आपके, और गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को। आज की वो पुरानी है 25-71 की, पेज नंबर 161। हेडिंग दिया है मुख्य सात कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। एक सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकती हो, जैसे और कर्म इंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो, ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अथवा सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती है, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल तो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं? एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है, दूसरा दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति नंबर वार आई हुई है, तीसरा वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न होकर चंचल होती रहती है, चौथी निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान काम और क्रोध इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है, पांचवी
संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डाल देते हैं। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम, ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ के नंबर वन रिजल्ट। अब इन सात बातों को मिटाने के लिए फिर से सात दिन का कोर्स कराना पड़े। इन सातों बातों को सामने रख सात दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वो अपने आप को रिवाइज कराना, जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो। तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो, वैसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो सात बातें सुनाई उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है वो मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गार्डली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ, जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना आप लोग भी। सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो, वैसे ही अपने प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो रिवाइज होने से क्या हो जाएगा, होगा सफलता समीप रहेगी, सफल और स्पष्ट दिखाई देगी, पर श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की तीन बातें सुनाओ, मन वचन कर्म में महानता के लिए। पूछ रहे हैं, महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, दूसरी बात जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख कर के संकल्प और कर्म करो, तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहली बात मेहमान, दूसरी बात महान अंतर और तीसरी बात महिमा, ये तीन बातें चलती रहें तो जो कमियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मेहमान न बनने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता रहता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। फीलिंग कब आती है, जब कोई आत्मा की निंदा करते हो अथवा बाप की निंदा के पात्र बनते हो, तो सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएगी। दृष्टि वृत्ति और वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपने और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो, अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमी को क्यों देखते रहते हो या बुद्धि में क्यों धारण करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी, किसकी भी कमी की फीलिंग क्यों होती है कभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि व उनकी संतुष्टता व सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल दृष्टि होती है। और वहीं अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट फीचर्स और नेचर की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो। कौन से दोनों चित्र? सिनेमा के पोस्टर्स और मंदिर की मूर्तियां एक ही कमरे में रखो तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति, स्मृति है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है, इसे तामसी दुनिया की है, तो स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना, वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहां भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना वो तो हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो। ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह की अट्रैक्शन नहीं होती है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएगी। समझा? ये है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेंट के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां।